ओम शांति, ओम शांति। तो गोविंद भाई बता रहे थे कि ड्रामा कितना सुंदर है। हम कई बार सोचते हैं, अरे आज स्वागत सत्र होना था, ये क्या हुआ, या ट्रेन किसी का ट्रेन लेट हुआ तो उनका भी नहीं मिस होगा, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि हमारे कारण एक दिन प्रोग्राम लेट हुआ तो खुशी होगी ना कि हमारे कारण। और आपको भी, सूर्य भाई जी कल जाने वाले थे, आज सूरज भाई का क्लास मिल जाएगा, तो कितना सुंदर ड्रामा रहा। तो अभी हमारे पास पौना घंटा समय है, हम आपको तीव्र पुरुषार्थ की छोटी छोटी युक्तियां बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। वे सारी बातें जो हमने दीदी दादियों से सुनी है, और कई बार मुझे संकल्प चलता है कि दादियों के समय अगर वो इतने सुंदर सुंदर बातें, कहानियां और तीव्र पुरुषार्थ की बातें कि आजकल भी कोई सुनाने वाला हो ऐसी बातें, तो हमने सुनी करीब करीब सारी दादियों को देखा और वो क्या पुरुषार्थ करती थी, तो उन सब का आज हम आपके सामने एक सार रूप में रखेंगे। पहली बात, हम सभी का लक्ष्य होता है कि हम तीव्र पुरुषार्थी बने, सभी का लक्ष्य होता है। और जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारा बहुत उमंग होता है, नशा होता है, खुशी होती है। अगर हमसे कोई उस समय पूछता है कि भाई आपका कैसा चल रहा है पुरुषार्थ, तो क्या जवाब देते हैं, बात मत पूछो, मैं उड़ रहा हूं है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन धीरे धीरे हमारी वो जो पुरुषार्थ की गति है, जो उमंग, उत्साह, नशा, खुशी, वो धीरे धीरे बढ़ने के बजाय क्या होता है, जबकि हम ज्ञान में चल रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, ज्ञान योग की हमारे अंदर और गहराई आ रही है, मजबूती आ रही है, लेकिन जो उमंग, उत्साह, नशा है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है। मेजॉरिटी सभी का नहीं, तो हमारा दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते रहें, तो सबसे पहले अमृत वेला, जैसा कि वो भाई गोविंद भाई बता रहे थे, तो जब मैं ज्ञान सरोवर आया तो मैंने यही नियम बनाया कि मुझे एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करना है। और आज 27 वर्ष हो गए, जब हम दृढ़ संकल्प रखते हैं तो बाबा की कितनी मदद मिलती है, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। तो ये मैं बाबा की मदद मानता हूं, मैं अपना नहीं मानता हूं। अच्छा, तो हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, हम टिप्स बताएंगे आपको अमृत वेला करना क्या है। बहुत सारी बातें होती हैं शिकायत, तो आप 16-11-95 की अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को अमृत वेला की किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो आप अमृत वेला की मुरली है 16-11-95। तो सार रूप में मैं बताऊं कि उसमें बाबा ने जो विशेष हाईलाइट कहा किया, तो उसमें बाबा ने यही कहा कि अगर अमृत वेले का संपूर्ण सुख लेना है, पूरी चाहते हो एकाग्रता रहे, बाबा से मिलन हो, भरपूर स्थिति का अनुभव हो, तो उसके लिए रात में जब सोने जाते हो तो कमरे में कभी भी बात नहीं करना। बाबा ने ये कहा, कमरे में बिस्तर पर बैठ करके बातें नहीं करना, संसार समाचार की लेन देन नहीं करना। फिर बाबा हमारे मन की बात बताते हुए कहा कि कई बच्चे कहते हैं, बाबा वही तो समय होता है, सारा दिन तो हम बाहर बाहर होते हैं, उसी समय तो इकट्ठा होते हैं, उस समय बातें नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और हम और बातें नहीं करते, हम सेवा के बारे में बातें करते हैं। तो बाबा ने यहां तक कह दी कि सेवा के बारे में भी बातें करना है तो कमरे से बाहर जाकर के दो शब्द कर लो, लेकिन कमरे में बिस्तर पर बैठ करके नहीं। तो बिस्तर पर बैठ करके क्या करना है? बाबा से बातें करनी है, सारा दिन का समाचार बाबा को सुना करके अपने आप को हल्का करना है। फिर आप सभी को याद होगा, बाबा ने मुरली चलाई, अव्यक्त मुरली, और ये तीन चार मुरली, इसकी तीन चार मुरली चली, जिसमें बाबा ने कहा जो बच्चे रात में सोने के पहले बाबा को सारे दिन का समाचार सुनाकर सोते हैं वो धर्मराजपुरी के सजाओं से बच जाएंगे। आप सभी को याद हो। तो एक टीचर बहन ने गुलजार दादी से ये बात पूछी, क्योंकि बाबा दो तीन मुरलियों में ये महावाक्य उच्चारण किए। तो टीचर बहन ने गुलजार दादी से ये प्रश्न पूछी कि दादी ये तो बहुत सहज बात है कि अगर हम रात में सोने के पहले बाबा को सारे दिन का समाचार बता देंगे और धर्मराजपुरी के सजाओं से मुक्त, तो ये तो सहज है दादी, हम इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो दादी ने बहुत सुंदर बात बताई कि बाबा को बताने का मतलब है कि रियलाइज करके हुए बताना और आगे के लिए दृढ़ संकल्प करना कि ये गलती नहीं होगी। ऐसे नहीं कि हम रोज ही गलती करते रहें और रोज बाबा को बताते रहें बाबा ये गलती हो गई और उसका हम रियलाइज नहीं करें, आगे के लिए संकल्प नहीं लें, वो नहीं। बाबा के बताने का मतलब कि वो आगे से हमारी गलती नहीं हो। अच्छा, फिर आंख खुलते ही हम क्या करते हैं? क्या करते हैं आंख खुलते ही? गुड मॉर्निंग। अच्छा, और भाई लोग, भाइयों की तरफ से आवाज ही नहीं आ रही, करते हैं ना? अच्छा, क्यों कहते हैं बाबा बार बार कि बच्चे उठते गुड मॉर्निंग करो? आप सोचिए, आपका बच्चा है और आपके पास सुबह आकर के आपको नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, तो आप क्या करेंगे? कुछ आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? और बाबा से हम गुड मॉर्निंग करें और भगवान से उठते ही आशीर्वाद, वो भी करेगा कि नहीं करेगा आपको? तो बहुत सुंदर विजन के साथ मैं जो करता हूं, आंख खुलते ही बाप दादा सामने बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग, और फिर मैं ऐसा अनुभव करता हूं बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा और वरदान दिया, बच्चे जो वरदान लेना चाहो, वरदाता है ना मास्टर, सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव, विजयी रतन भव, पद्मा पदम भाग्यवान भव, जो वरदान लेना चाहो ले लो। फिर उसके बाद आता है योग। अच्छा, अब हम कई बार बिस्तर पर ही बैठ करके योग करते हैं, तो ये नियम बनाना जहां हम रात भर सोए हुए हैं वहां योग नहीं, ठीक है, वो आप बिस्तर छोड़ दीजिए। वैसे तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण ब्राह्मण आत्मा के घर में एक बाबा का रूम होना चाहिए, है ना? और अगर आपके पास जगह नहीं है तो कम से कम एक फोटो तो लगा सकते हैं एक कोने में। साकार मुरली की बात आप सभी को याद होगा, बाबा ने कहा कि जो आपने अपने घर में बाबा के निमित्त एक छोटा सा भी स्थान बना के रखा है तो अंत में पूरा घर आपका प्रकृति के चपेट में आ सकता है, लेकिन वो स्थान सुरक्षित रहेगा और आपको भी सुरक्षित करेगा, क्योंकि वहां पर हम रोज योग किए ना, बाबा की याद के प्योर वाइब्रेशंस फैलाए हैं ना। तो एक स्थान निश्चित कर लो, और बाकी आप बेड छोड़ना है चाहे ऊपर छत पे चले जाओ या कुर्सी बाजू में रख लो, कहीं भी योग करो। और योग के लिए जब हम योग में बैठते हैं, चाहे अमृत बेला, चाहे दिन में, चाहे शाम को, एक अपने जीवन का नियम बना लो कि जब भी योग में बैठें तो बिना कोई संकल्प लिए, बिना कोई लक्ष्य लिए बैठना ही नहीं है, ठीक है? अगर आप ऐसे आकर के बैठ गए तो आपका ऐसे ही टाइम चला जाएगा। अपने पूरे भर जीवन भर का नियम बना लो। देखो, सालों बीत जाता है, हमारा यही शिकायत रहता है योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम कोई लक्ष्य लेकर के नहीं बैठते, कोई संकल्प लेकर के नहीं बैठते। आपको ये आधा घंटा बैठना है, एक घंटा बैठना है, पहले एक बार सोच लो इस आधे घंटे में मुझे करना क्या है, क्या करना है। आधा घंटा बैठना है। बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं, बहुत सारे अभ्यास बताए, वो कब के लिए बताया, कब करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अपने आप को समझाओ, अपने आप को पूछो कब करेंगे, यही तो समय है। तो अब जैसे आप सुबह योग करते हैं 45 में, 4 से 4:45, तुम नियम बना लो भाई 15 मिनट हम आत्मा के सातों गुणों का अभ्यास करेंगे, दूसरे 15 मिनट में हम फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे, तीसरे 15 मिनट में हम परम धाम में बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, या जो भी आपको बाबा ने बहुत सारे सुदर्शन चक्रधारी बनो, 5 रूपों का अभ्यास करो, सकास दो, है ना, ज्वाला स्वरूप, इस योग के अलग अलग अभ्यास हैं, फिर ये अलग टॉपिक है। तो हमें क्या अभ्यास करना है वो पहले, अगर योग के पहले हमने पावरफुल संकल्प रखा तो पूरा समय आपका योग पावरफुल रह जाएगा, और अगर हम ऐसे साधारण रीति से आकर बैठे तो साधारण रीति से बीत जाएगा। अच्छा, अब योग का समय भी हो गया, अब आगे बढ़ो। अब योग करने के बाद बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, कोई बातें हैं, कोई विघ्न है, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं और उसका कोई आपके सामने हल नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, मन में द्वंद है, तो बाबा ने समय बताया है कि योग के समय नहीं, पावरफुल योग करो, और योग करने के बाद फिर वो जब आपका योग का समय पूरा हो जाता है फिर आप बाबा को बात, बाबा ये बातें हैं मैं क्या करूं, तो बाबा ने कहा है आपको ऐसे ही आंसर मिलेगा जैसे सामने से कोई बता रहा हो, ऐसे ही आपके अंदर टचिंग आएगी। देखो योग कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तो उसके हम टचिंग को कैच कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट मुरली का समय आता है। अब हम हर ब्राह्मण आत्मा अमृत वेले उठते ही हैं, तो अमृत वेले 4 बजे से 8 बजे तक, अब इन 4 घंटे के अंदर 1 घंटा तो हमारा योग में चला गया और 7 से 8 मुरली सुनते हैं 1 घंटा उसमें, बाकी बचे बीच के 2 घंटे। तो आप यहां से स्टार्ट करो कि 4 से 8 शुरुआत में मैं मौन रहूंगा, मैं किसी से, वैसे भी आपको किसी से बोलना उस समय नहीं होता है। अच्छा 2-3 दिन आप मौन रहे फिर आप स्टार्ट करो कि हर घंटे हम कोई ना कोई स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो ये जो आपने 4 घंटे कर लिया इसका प्रभाव आपके सारे दिन के ऊपर पड़ेगा। 4 घंटे आप मौन में रहे और कोई ना कोई स्वमान के अभ्यास में रहे तो इसका प्रभाव सारे दिन की दिनचर्या पर, और इसी प्रकार आप शाम को 6 से 10 रख लो मौन में, फिर उसके बाद कोई ना कोई स्वमान का अभ्यास, तो वो 4 घंटे का प्रभाव शाम का फिर वो अमृत वेले के ऊपर आकर पड़ेगा। आपका 8 घंटा, बाबा कहते ना 8 घंटा, हम कई बार सोचते हैं तो मधुबन वालों के लिए, महारथियों के लिए 8 घंटा, हम घर गृहस्थी वाले हम कहां से करेंगे, पहले हम ये पॉइंट छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है ना, ऐसे थोड़ी कहेगा जो हमसे नहीं हो। तो ये भी नियम बनाए। नेक्स्ट हम मुरली सुनते हैं। अभी हम आपसे पूछेंगे आज की मुरली सुनी, तो आप कहेंगे हाँ सुनी, है ना, यही कहेंगे ना, रोज सुनते भी हैं। लेकिन मुरली सुनने का मतलब, पहले तो हम मुरली सुनने का मतलब समझे। माताओं को अनुभव होगा, कई बार माताएं बोलती है मेरा बच्चा है ना मेरी सुनता ही नहीं है, कितना भी कहो कितना भी कहो, कहते कहते थक जाते लेकिन मेरी सुनता ही नहीं है। माता बोल रही है, बेटा सुन भी रहा है, फिर भी मां बोल रही कि मेरी सुनता नहीं है। कब बोला? जब उस बच्चे ने किया नहीं तो। मां बोल रही है और बच्चे ने नहीं किया तो मां क्या बोलती है? बच्चा मेरी सुनता नहीं। इसी प्रकार हमने मुरली सुनी और किया नहीं तो मुरली सुन तो ली लेकिन किया नहीं तो क्या हमने सुना मुरली? बाबा तो खैर नहीं कहेगा लेकिन हम खुद समझ जाएं क्या हमने मुरली सुनी। तो ये नियम बना लेना कि हमें एक बात, हम सारे बात में जाकर के सब कुछ छूट जाता है, एक बात। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, एक बार मैंने दादी से सुना कि दादी बता रही थी कि मैं मुरली किस प्रकार से लिखती हूँ। तो कहा हम लोग चार डायरी बनाए थे, तो रोज की मुरली से हम चार बातें, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि रोज की मुरली से चार बातें। तो ये बात दादी की सुन करके फिर मेरे मन में चला कि इस प्रकार से हम भी लिखेंगे। तो हम फिर क्या किए कि रोज की मुरली से सात बातें। आप देखना, कई बार हम कहते हैं ना मुरली सुनते याद नहीं रहता, आपको भूले गई नहीं मुरली, आप सात बातें क्या करो। हम क्या करते मुरली लिखते हैं, हाँ मीठे बच्चे, धारणा सार, वरदान, स्लोगन, बस हो गया। हम खुद मेहनत नहीं करते इतनी लंबी चौड़ी मुरली, मुरली के बीच से हम भी तो कुछ निकालें। अच्छा तो आज मैं आपको सात बातें बताता हूं, अगर वो आप मुरली के बीच से निकालेंगे तो आपको, क्योंकि आपने मेहनत करके निकाला है, एकाग्रचित होकर के मुरली सुना है, तो वो सात बातें निकली है। तो पहली बात, आज की मुरली से हेडिंग डालिए स्व उन्नति के लिए सात सूत्री कार्यक्रम। सात सूत्र निकालो। पहला सूत्र आज की मुरली से ईश्वरीय महावाक। जो महावाक हर मुरली में, कोई ना कोई ऐसा महावाक होता है जो आपके उमंग उत्साह को, आपके नशा को, आपको लग जाती है ऐसी कोई बात, चाहे वो मीठे बच्चे में हो, मुरली के बीच में हो, वरदान में हो, कहीं से भी ऐसी एक बात। देखो बातें बहुत निकलेगी, हमें बहुत में नहीं जाना है, एक बात ईश्वरीय महावाक्य लिखा, उसके नीचे आज के ईश्वरीय महावाक्य में बाबा ने ऐसी कौन सी बात कही जो हमें लग गई। दूसरा सूत्र, आज की मुरली से स्वमान निकालेंगे तो सौ स्वमान निकलेगा, लेकिन हमें उस सौ में नहीं जाना, एक। और कौन सा? जो हमें सारा दिन अभ्यास, हमारा निकालने का मतलब निकाल कर रखना नहीं है, उसको सारा दिन प्रैक्टिकल व्यवहार में यूज करना है, तो स्वमान। दूसरा सूत्र आज की मुरली से स्वमान, जो आपको लगे अंदर में वो स्वमान लिख लो। तीसरा सूत्र है आज की मुरली से योगाभ्यास, योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। मैं तो खास करके जो बाबा योग के संदर्भ में कहते हैं तो शाम को उस दिन उसी आधार से मैं योग करता हूं। आप देखेंगे रोज आपको वैरायटी तरीके से योग आनंद आएगा। आज बाबा ने योग के संदर्भ में क्या कहा मैं उस तरीके से याद करूंगा, तो रोज नया तरीका हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें होंगी, एक बात नोट करना है और उस दिन सारा दिन उसको जब भी योग में बैठे वो अनुभव करना है। तो तीसरा सूत्र हो गया योगाभ्यास। चौथा, आज की मुरली से धारणा, एक ही बात नोट करना और व्रत रख लेना कि आज कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन ये जो बाबा ने कहा है आज मुझे करना ही है। ठीक है, कितने सूत्र हो गए? चार। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और खास करके कई बार हम लोग जहां भट्टी उट्टी कराने जाते हैं तो टीचर बहनों से मिलने के लिए बोलते हैं, तो ये बात मैं खास टीचर बहनों का, हर एक के लिए है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, वो है चिंतन। हम वैसे टीचर बहन को मैंने इसलिए बोला कि वो ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान तो हम सबको ही सुनाते हैं, सबके काम आने वाली चीज है। आज की मुरली से चिंतन, आप अगर ये क्या है, हम कहते चिंतन क्या करें, चिंतन चलता नहीं है, चिंतन तो चलता है लेकिन हम व्यर्थ का चिंतन करते हैं। व्यर्थ का चिंतन चलता है कि नहीं चलता? तो आज बाबा ने क्या कहा, एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करें और लिख लें, तो वो आपका अपना बन जाएगा, जीवन में कभी भूल नहीं सकता, आपको ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी और योग बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि समर्थ चिंतन आ गया ना अंदर में, समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा हो गया, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो चिंतन, ठीक है ना? और चिंतन का सबसे अच्छा तरीका लिखना। हम डायरी पे, अच्छा कई बार होता है हम सब चाहते हैं हाँ ठीक है चिंतन करेंगे लिखेंगे, लेकिन करेंगे करेंगे और वो ना ऐसा बीत जाता है समय, आप करेंगे नहीं, करना ही है, डायरी पेन लेकर के बैठ जाओ, आपको लगेगा अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना सुंदर लिख सकता हूं। तो बाबा टच करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको टचिंग होगी और आप लिख सकते हैं। अच्छा कितना हुआ? छह हो गया, पांच, छठा, छठा है आज की मुरली में बाबा ने सेवा के संदर्भ में क्या कहा, वो नोट करिए और उसको देखो। सेवा जो बाबा ने, आजकल हम लोग केवल मुरली सुन लेते हैं, हम जब दादियों के अनुभव सुनते तो दादी कहती कि हम देखते थे कि आज बाबा ने क्या कहा, और जब तक वो कार्य हम कर नहीं लेते थे तब तक हम खाना, आप दादी जानकी की बात सुनो, दादी ने कहा जब तक बाबा ने उनको कहा कि जब तक तुम्हें किसी को ज्ञान सुना नहीं लेना तब तक नाश्ता नहीं करनी है, तब से उन्होंने नियम बना लेना, नियम बना लिया कि जब तक किसी को, तो कहने का भाव ये है कि हम भी नियम बनाएं। एक बार यहाँ पर मनोहर दादी रहती थी पहले, आप सभी को मालूम होगा, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो अमीर चंद भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, तो अनुभव सुनाते उन्होंने एक बात कही कि मनोहर दादी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि अमीर चंद भाई बताओ बाबा से तुम्हारे कितने संबंध हैं? तो अमीर चंद भाई ने कहा बाबा से तो हमारे सारे संबंध हैं, लेकिन मुख्य तीन संबंध जो बाबा मुरलियों में चर्चा करते हैं, कौन से तीन मुख्य संबंध? बाप, टीचर, सतगुरु। तो दादी ने उनको कहा कि तुम्हारे तो तीन संबंध नहीं है, तुम्हारा केवल टीचर का संबंध है, स्टूडेंट और टीचर का, बाकी बाप और सतगुरु का नहीं। तो उन्होंने कहा दादी ऐसा क्यों, सबका तीन संबंध है, मेरा एक ही संबंध है, ऐसा क्यों, हमारा क्यों तीन संबंध नहीं है? दादी ने बहुत प्रैक्टिकल बात सुनाई, कहा देखो तुम मुरली सुनने आते हो है ना, टीचर, हाँ भगवान टीचर बनकर के मुरली सुनाता है और तुम सुनने आते हो, तो उसके स्टूडेंट बन गए, स्टूडेंट का संबंध जोड़ा, लेकिन बाप का संबंध कब कहा जाएगा? बाप का संबंध का अर्थ क्या समझा? बाप का बाप और बच्चे का संबंध तब माना जाएगा जब बच्चा बाप के कार्य में सहयोगी बने। और आप तो केवल मुरली सुन करके चले जाते हो, सारे दिन में कुछ सेवा करने आते हो? कहा हाँ दादी ये बात तो है। तो कहा तब से दादी मैं कान अपना पकड़ता हूँ, आज से मैं बाप और बच्चे का माना, बच्चा वो लायक बच्चा, सपूत बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा वो जो बाप के कार्य में सहयोगी बने। तो कहा तब समझ में आया कि बाप और बच्चे का संबंध। अच्छा तूने पूछा दादी फिर वो सतगुरु का संबंध क्या होता है? तो कहा सतगुरु का संबंध तब होता है जब शाम को भी आकर योग करो। तो ये हुआ बाप टीचर संबंध का, है ना? तो इस प्रकार से हम सेवा में देखें। अच्छा चलो कुछ नहीं, बाबा ने कहा कोई ना कोई तन से, मन से, धन से, और कोई ना कोई सेवा, चाहे अपने चाल चलन से, चेहरे से, सूरत से, बाबा क्या कहते हैं सबसे बड़ी सेवा आज जो केवल ब्राह्मण आत्माएं कर सकती हैं, वो कौन सी सेवा है? हाँ मनसा सेवा। कई बार बाबा कहते कि सारे संसार के आत्माएं बहुत दुखी हैं, बहुत अशांत हैं, परेशान हैं, वो आत्माएं पुकार रही हैं। और बाबा ने कहा उनकी पुकार हमें परमधाम में सुनाई पड़ता है, दुखी अशांत आत्माओं की पुकार हमें परमधाम में सुनाई पड़ता है और तुम बच्चे वहीं रहते हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो क्या करना है? तो दिन में को कुछ समय निकाल करके सकाश देने का काम, प्योर वाइब्रेशंस फैलाने का काम, ये केवल ब्राह्मण आत्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी सेवा है। क्यों? क्योंकि आज देखो, सारे संसार में जो भी आत्माएं हैं उनके किस प्रकार के विचार है, ज्यादा निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। तो वाइब्रेशंस निगेटिव फैल रहे हैं। और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस कैसे फैलते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वायुमंडल में प्योर वाइब्रेशंस फैलाना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाना, ये है सबसे बड़ी सेवा। ये ऐसे जैसे अंधकार में आपने दीपक जला दिया, तो थोड़ा भी समय निकाल करके ये काम। अच्छा, सातवां है आज की मुरली से स्व चेकिंग। कई बार हम कहते हैं ना, क्या चाड़ लिए, अमृत बेला उठा, हाँ मुरली सुनी, हाँ बस, हाँ ना बोर हो जाते हैं। तो रोज की मुरलियों के आधार से आप चार्ट बनाओ। उपरोक्त 6 बातें ये आप चार्ट के तरीके से चेक करो, आप देखेंगे क्या मुरली का आपको सुख मिलेगा, मुरली की एकाग्रता होगी, आपका योग भी सहज, सब कुछ सहज। ठीक है, तो ये था कुछ मुरली सुनने के संदर्भ में। अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं दिनचर्या के हिसाब से, जो आपके जीवन में काम आए। नेक्स्ट, जब कभी हम घर से बाहर कहीं जाते हैं, ये बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो, अच्छा इसमें जो आप सभी को अनुभव होगा, जब आप छोटे बच्चे थे तो घर से ऐसे चले जाते थे या माँ बाप को पूछ के जाते थे? अब मैं क्या समझूं, आप बिल्कुल चुप हैं तो मैं ये समझूं पूछ के जाते थे ना? अच्छा आपके, चलो ठीक है, आप अपने बचपन की बात भूल गए होंगे, तो आपके बच्चे क्या करते हैं, पूछ के जाते हैं या ऐसे भाग जाते हैं? पूछ के जाते हैं, है ना? अच्छा, इसी प्रकार बाबा ने कहा कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कुछ सेकंड ही लगने वाला है, बाप दादा को आह्वान करो। या बाबा के रूम बनाया तो बाबा के रूम के पास चले जाओ, फोटो लगाया वहां चले जाओ, या दरवाजे से निकल रहे हो, मना कहने के भाव ये है कुछ सेकंड के लिए आप खड़े हो जाओ और बाप दादा को आह्वान करो। बाबा आए, बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा और विजय का तिलक लगाया, सफलता मुहूर्त भाव का वरदान दिया, बच्चे जाओ सफलता मुहूर्त। ठीक है ना, कुछ सेकंड लगेगा, फिर जहां भी जाएंगे जो भी कुछ करेंगे आपके कार्य में सफलता हुई पड़ी है। बाबा से आप वरदान लेकर के घर से निकले हैं, बाबा से सफलता मुहूर्त का तिलक लगवा करके घर से निकले हैं। तो ये नियम बना लो कि जब आप घर से बाहर निकले बाबा को आह्वान करें, बाबा से वरदानी हाथ विजय का तिलक लगवाएं, वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर रखवाएं, बस फिर घर से बाहर निकले। कोई मुश्किल तो नहीं? ठीक है, और आगे बढ़ो। ऐसे ऐसी कुछ बातें जो आपके प्रैक्टिकल जीवन में कुछ काम आए। नेक्स्ट है, हम घरों में रहते हैं, है ना, और आजकल हमारा ये शिकायत रहती है कि बच्चे बात नहीं मानते, है ना, बहुत बहुत लोगों की शिकायत रहती है बच्चे बात नहीं मानते। तो आप देखिए, आप मधुबन को देखिए, आपके यहाँ 4 लोगों का परिवार है और मधुबन में 1000 लोग, है ना, तो दादियों ने कैसे चलाया, बाबा ने कैसे चलाया? तो एक बात, अपने घरों में अपने परिवार में किसी की कमी कमजोरी ना देख करके उनके गुण विशेषताओं को देखना और महिमा करना। मानो आपके आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, और हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये बहुत नालायक है, कोई काम का नहीं है, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता, चार लोगों के बीच में वही महिमा करो, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है। वो भले बिल्कुल नहीं सुनता आपका, लेकिन क्या बोलना आपको, चार लोग जब आपके घर में आते हैं, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सपूत है, जो कहता हूं वो तुरंत करता है। ठीक है, बड़े गंभीर होकर सुन रहे हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप अपने बेटे को कहेंगे, जरा बेटा एक गिलास पानी लाना, वो रोज बिल्कुल नहीं सुनता, आप महिमा करके फिर आप बोलेंगे, ए बेटा एक गिलास पानी लाना, लाएगा कि नहीं लाएगा। हाँ, इतने अभी चार लोगों के बीच में महिमा हुई है, वो भी तो सोचेगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। तो ऐसे हम परिवर्तन कर सकते। बाबा ने हमारा कैसे परिवर्तन किया, हम कुछ भी हैं लेकिन बाबा रोज में मीठे बच्चे हैं, तुम ये हो है ना, तुम वो हो, कितना सम्मान हमारा याद दिलाया, तुम हो अनहार देवता हो, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, जहान के नूर हो, विजयी रतन हो, और वो स्वमान याद दिला दिला करके हमें ऐसा लायक बना देते हैं। नेक्स्ट है, अपने अपने घरों में रोज बाप दादा को आह्वान करना। ठीक है, बाबा को आह्वान करो, आप ऐसे अनुभव करो कि जैसे परम धाम से ज्ञान सूर्य से बाबा चले, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किए, दोनों महाशक्तियां हमारे घर में आ गई और बाबा से सुख शांति पवित्रता की किरणें निकली और घर के कोने कोने में फैल गया। फिर बाबा को, बाबा ये हाँ, ये आपका ही घर है, आप इस घर के मुखिया हैं, आप इस घर के मालिक हैं, आप इस घर के जिम्मेवार हैं। तो जिस घर का मालिक मुखिया जिम्मेवार बाबा बन जाए, वो घर कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, स्वयं भगवान आपके घर का मालिक बन गया तो आपका घर कैसा बन जाएगा, स्वर्ग से सुंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट, बाबा कहते मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बातें आए, मुझे यूज करो। हम कई बार कहते हैं कि बाबा तो कहता है मुझे यूज करो, हमने खूब बाबा को बुलाया, खूब आह्वान किया, बाबा आ जाओ, ये समस्या आई है, परिस्थिति आई है, और बाबा को इतना बुलाया लेकिन बाबा ने तो सुना ही नहीं, बाबा तो आए ही नहीं। ऐसा होता है क्या, बच्चे कंप्लेन करते हैं बाबा को भी बुलाना देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बुलाए बाप ना आए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बच्चे कहते नहीं बाबा मैंने तो बुलाया आप आए नहीं, तो बाबा उसके तीन कारण बताते हैं। अगर हमें समस्या आई, परिस्थिति आई, मदद का अनुभव नहीं हुआ, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ, तो उसके तीन कारण हैं और वो तीन कारण समय प्रति समय मुरली में आता रहता है। पहला बाबा ने कहा, बच्चे स्वमान की सीट पर सेट हो करके, है ना, साधारण तरीके से नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, स्वमान की स्थिति में स्थित होकर के आह्वान करोगे तो शक्तियां हाजिर होगी ही होगी। दूसरा, बाबा की मदद, बाबा की शक्तियां उन्हीं बच्चों को मिलती है जो बाबा की श्रीमत के आगे जी हजूर करते हैं। जितना आप श्रीमत के आगे जी हजूर करेंगे उतना आपके आगे शक्तियां जी हजूर करेगी। बाबा हमारा क्या लगता है, माता पिता है ना, है या ना,
आप तो जैसे कि
है ना माता पिता। अच्छा, आपके भी बच्चे होंगे। हाँ, कई बार हम कहते हैं हमारे बच्चे बात नहीं मानते, तो वो हमारा माता पिता, हम उसकी बात कितना मानते हैं, जितना हम उसकी बात मानेंगे उतना हमारे बच्चे भी हमारी बात मानेंगे, लोग भी हमारी बात मानेंगे। तो श्रीमत के आगे जी हजूर करेंगे तो शक्तियां भी हमारे आगे जी हजूर। नेक्स्ट तीसरी बात, जो समय को सफल करते हैं शक्तियां उसी के आगे आती है, बाबा की मदद भी उसी को मिलती है। अगर हम अपने समय स्वास्थ्य संकल्प को व्यर्थ गंवाते हैं तो समय जैसे कि बदला लेती है कि तुमने मुझे व्यर्थ गंवाया, जब समय पर शक्ति की बहुत जरूरत होगी तो मैं भी आने नहीं दूंगी। जो समय को बर्बाद करता है समय भी उसे बदला लेती। अगर ये तीन बातें, स्वमान की सीट पर सेट रहना, श्रीमत के आगे जी हजूर करना और समय को पूरी तरह से सफल करना, अगर ये तीन बातें हैं तो आपको हर कार्य में सफलता ना मिले, बाबा की मदद ना मिले, हो ही नहीं सकता। तो ये तीन कारण चेक करना। बाबा कहते हैं कि देखो कोई समस्या परिस्थिति आती, बातें आती तो हम क्या करते हैं? बाबा कहते देखो मैं हजार भुजा वाला और मेरे बच्चे क्या करते हैं? दो भुजा वालों को देखते हैं। इसका सहयोग मिल जाए, उसका मिल जाए, उसका मिल जाए, और जब कहीं से सहयोग नहीं मिलता तो लास्ट में हम बड़े प्यार से, बाबा आप ही तो हमारे हो, आपके अलावा हमारा और कौन है? बाबा देख करके मुस्कुराता रहता है कि हाँ। अच्छा आप सोचिए, आपका कोई मित्र है, वो चारों तरफ से लास्ट है ना चक्कर लगा करके मदद मांग करके लास्ट में आपके पास आवे तो आप क्या कहेंगे? आपका मित्र है, आप उसको सहयोग करेंगे, लेकिन एक बात जरूर सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? तो कहेंगे ना, अच्छा अब आ गए, कहीं से नहीं मिला ना सहयोग, अब पता चल गया ना, देख लिया ना, हाँ सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया ना, आ गए अब। लेकिन बाबा ये नहीं कहता, बाबा हमें तुरंत सहयोग देता है। तो बाबा पूछता, अच्छा बच्चे ये बताओ, दो भुजा वाला ज्यादा सहयोग देगा या हजार भुजा वाला? हजार भुजा वाला। हम सबको पता है कि हजार भुजा वाला ज्यादा सहयोग देगा। तो बाबा ने कहा, जब पता है हजार भुजा वाला ज्यादा सहयोग देगा तो फिर तुम दो भुजा वाले की तरफ क्यों देखते हो? क्यों नहीं मेरा सहयोग लेते? क्यों आपकी दृष्टि पहले देहधारियों के ऊपर जाती है? तो बाबा ने कहा, 63 जन्म तो तुम देहधारियों में रहे। तो बाबा हमें सदा बोझ मुक्त, कोई भी बोझ है, समस्या है, चिंता है, बाबा कहते मेरे बच्चे और मेहनत, मेरे बच्चे और बोझिल, मेरे बच्चे और उदास, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाबा हमें कैसा देखना चाहता है? लाइट, हल्का, सदा खुश, है ना? आप भी तो अपने बच्चे को ऐसा देखना चाहते हैं ना। आपका बच्चा उदास रहे, परेशान रहे, चिंता में रहे तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ? आप क्या कहेंगे? अरे क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना, तुम क्यों चिंता करते हो? तो बाबा भी हमें यही कहता है, लेकिन हम ना ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना चिंता किए, बिना बोझ उठाए जैसे कि हम रह नहीं पाते। तो बाबा कहते 63 जन्म तो बोझ उठाते आए, चिंता करते आए, अब तो मुझे दे दो और आप बिल्कुल हल्के रहो। अच्छा नेक्स्ट, आप जब भोजन करते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट ना जाए, भोजन करते हैं, हाँ भोजन करते हैं ना रोज, हाँ तो बाबा के महावाक्य हैं। अभी देखो कोई डॉक्टर अगर क्लास कराने आए तो भीड़ लग जाएगी, लोग हमारा घुटना दर्द है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, ये दवाई बताओ, वो दवाई बताओ, है ना। और बाबा ने मुरली में सब बताया है विधि। हम मुरली का अध्ययन करें ना, एक तो ये नियम बना लेना चाहिए, 69 से अभी तक जो 2017 तक सारी मुरली ना एक एक आप रोज पढ़ने की आदत डालो, आपको देख आपको इतना आनंद आएगा, सारा खजाना बाबा ने दिया है। तो बाबा ने उसमें कहा कि अगर योग युक्त होकर भोजन करते हो तो उस भोजन के अंदर विटामिन ए बी सी डी सारे विटामिन आ जाते हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई विटामिन के कमी के कारण ही तो बीमारी आती है। अच्छा सारे विटामिन आ गए। अभी अव्यक्त मुरली, पिछले संडे की अव्यक्त मुरली याद करो, योग युक्त होकर भोजन करेंगे तो वो भोजन क्या बन जाएगा? दवाई बन जाएगा। किसके महावाक्य? भगवान के महावाक्य। दुख भंजन भोजन बन जाएगा, वो दवा का भी काम करता है तो दुआ का भी काम करता है। मीन्स अच्छा चलो दवा, और दवा से भी बढ़ के दुआ। जब दवा भी काम नहीं करता तो लोग क्या कहते हैं? भाई दुआ मांगो, दुआ मांगो। और आपको योग युक्त होकर भोजन करने से ही दुआ मिल रहा है, कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी। आप प्रैक्टिकल में आ जाइए, और प्रैक्टिकल में आ जाइए। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? धीरे धीरे भोजन करो कि जल्दी जल्दी करो? धीरे धीरे। और योग युक्त करेंगे तो कैसा होगा? ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा। तो एक एक गिट्टी बाबा की याद में करो, सारे विटामिन आ जाएंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। हैं? तो ऐसे एक बार क्लास करा रहा था तो एक माता पूछती है, एक माता ने हाथ खड़ा किया, भैया एक प्रश्न का जवाब देना। मैंने कहा क्या? तो कहा आपने बात बहुत अच्छी बताई कि योग युक्त होकर भोजन करो, और हम चाहते भी हैं योग युक्त होकर करूं, लेकिन भोग तो लगा लेते हैं, उसके बाद हम कहां चले जाते हैं? भोजन के बाद याद आता है कि योग युक्त होकर करना था। ऐसा भी कोई विधि है जिससे हमें याद रहे? कि सारा समय हमें याद रहे कि योग युक्त होकर करना है। तो माता, मैंने सोचा है माता तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताई है, सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं उसको बताया एक विधि कि आप ना, बाबा ने कहा है कि हर गिट्टी, अगर एक गिट्टी भी बाबा की याद में स्वीकार नहीं किया तो वो गिट्टी माया के मुंह में जाती है। और जो हम बाबा की याद में स्वीकार करते हैं वो समझो हम बाबा को खिलाते हैं। अच्छा अभी आप सोचो, हमारा सबसे ज्यादा प्यार बाबा से है ना, या किसी का माया से भी है? बाबा से ही है ना। अच्छा अब बाबा ने कहा तुम बाबा की याद में खाएंगे तो समझो बाबा को स्वीकार कराया, और बाबा की याद में नहीं खाया तो माया खाई। अब बताओ ज्यादा गिट्टी आप बाबा को खिलाते हो या माया को? किसको? माया को। प्यार बाबा से, गिट्टी माया को खिलाना, क्या बात है। तो अभी क्या करना है? तो ये पांच स्वरूपों का एक गिट्टी खाओ तो अनादि स्वरूप। देखो बड़ा सुंदर आपका ये पांच स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी गिट्टी खाओ तो आदि स्वरूप, स्वर्ग में पहुंच जाओ। तीसरी गिट्टी खाओ तो इष्ट देव भगत हमें भोग लगा रहे हैं। और चौथी गिट्टी खाओ तो ब्राह्मण स्वरूप में बाप दादा को सम्मुख देखो, बाबा अपने हाथों से हमारे मुख में डाल रहे हैं। कभी आप भी बाबा के मुख में डाल दो, कभी आप बाबा, कभी बाबा आपके मुख में, ये फीलिंग करो। ऐसा नहीं कि सामने कोई बैठा और इतने फीलिंग चले जाओ उसी के मुंह में आप डाल दो, है ना। आप मना, आप ये फीलिंग कि बाबा मुझे खिला रहे हैं, हम बाबा को खिला रहे हैं। और पांचवा फरिश्ता बन जाओ। तो इस प्रकार से आपका पांचों स्वरूपों का अभ्यास हो जाएगा योग युक्त। ओम शांति।